عباد الله،
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، سورہ انعام کی آیات نمبر 118 سے 121 ہیں. ان کے ہم نے ربط آیات پچھلی کلاس میں پڑھنے شروع کر دیے تھے، بلکہ شاید پڑھ کے مکمل بھی کر لیے تھے. یعنی ربط آیات سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آیات نازل فرمائی تو ان کا پچھلی آیات سے کیا ربط بنتا ہے، کیا تعلق بنتا ہے. کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے. بظاہر ہم جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی جیسے کہ بے ربط باتیں نعوذ باللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. کبھی ایک ایک ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، پھر ایک دم سے کسی دوسرے ٹاپک پہ بات شروع ہو جاتی ہے نا. جیسے یہاں پر بھی بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پیچھے جو ہے وہ اللہ رب العزت بات کر رہے تھے اپنے کلمات کی، لا مبدل لکلماتی، اور جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو منع فرما رہے تھے کہ اگر آپ نے زمین میں اکثریت کی اتباع کری، اور اب ایک دم سے جو ہے نا وہ ذبیحہ پہ بات شروع ہو گئی، کھانے پینے پر، رائٹ، کہ یہ والا جانور، ایسا جانور کھاؤ ایسا جانور نہ کھاؤ. ٹھیک ہے، تو بظاہر بے ربط سا ایک جملہ لگتا ہے یہاں پر یہ ذبیحے سے متعلق بات کرنا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو ربط آیات بیان فرمائی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں، جو کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل بھی فرما دی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ جو ذبیحہ کے اوپر نا تو غیر مسلم مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنا ذبح کیا ہوا تو کھاتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے نے مارا ہے تو اس کو تم نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، یعنی جس کو ہم مردار کہتے ہیں نا، جو اپنی موت آپ مر جاتا ہے اس کو مردار کہتے ہیں، عربی میں اس کو میتہ کہتے ہیں. تو بھائی کوئی کوئی ذی روح جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں مرتی نا، تو اللہ تعالیٰ ہی جان نکالتے ہیں ملک الموت کو بھیج کر کے. ملک الموت جو ہیں وہ صرف انسانوں کی جان نکالنے کا کام نہیں کرتے، بلکہ ایون جانوروں کی جان نکالنے کا کام بھی اللہ کے حکم سے ملک الموت ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ملک الموت مارتا ہے اللہ کے حکم سے اس کو تم نہیں کھاتے ہو. تو مسلمان نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے کہ بھئی یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا، ان آیات کے ذریعے سے یہ جواب دیا کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے احکام کا التزام کیے ہوئے ہو، یعنی تم نے تو اللہ کے حکموں کی ماننے کا اقرار کیا ہوا ہے نا. میرے نبی ہونے کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے حکم بتاؤں گا تو تم ان کو مانو گے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی تفصیل بتلا دی ہے کہ بھئی کیا چیز حلال ہے تمہارے اوپر، کیا چیز حرام ہے، بس اس پر تم چلتے رہو. حلال پر حرام ہونے کا اور حرام پر حلال ہونے کا شبہ مت کرو، اور مشرکین کے وساوس کی طرف التفات نہ کرو. ٹھیک ہے، تو تم شبہ میں کیوں پڑ رہے ہو؟ بات کیا ہوئی؟ یعنی یہ جو مسلمان चंद मुसलमान जो शुबों में पड़ रहे थे कि वाकई वो लोग तो अकल की बात कर रहे हैं कि अल्लाह का मारा जो है वो हलाल होना चाहिए और तुम्हारा मारा जो है वो हराम होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है वो बड़े हैं, अल्लाह अफजल हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो शुबो क्रिएट हो रहा था तो फरमाया कि नहीं, तुम उनकी तरफ इल्तफात ना करो, यानी उनकी बातें मत सुनो, ठीक है, बल्कि यहाँ अल्लाह की बात सुनो ना, अल्लाह के कलाम को सुनो, अल्लाह के नबी को सुनो, ठीक है, जो कि अल्लाह के कलाम को तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। तो इससे हमें उसूल की बात क्या समझ में आई, जिस पे जुमे में भी इस आज ने बात करी थी कि भाई जब हम बगैर इल्म के और बगैर ईमान के, ठीक है, हम अपने ईमान पर मेहनत किए बगैर और अपने इल्म पर मेहनत किए बगैर जब हम दुश्मनों की बात सुनना शुरू कर देते हैं, तो लाजिमी नतीजा ये होता है कि हम शक में पड़ जाते हैं, हम शुबों में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज जो है वो आज भी बार बार समझाई जा रही है, अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ में आ रही बहुत सारे लोगों को, कि जब आप दुश्मनों के बनाए हुए तालीमी निजाम से अपने बच्चों की जहन साजी करते हैं, उनको इल्म पहुंचाते हैं, तो भाई दुश्मनों के तालीमी निजाम में तो फिर ऐसी ही बातें होती हैं ना, जो कि आपको कुरान और हदीस के खिलाफ जो है वो शुबों में मुबतला कर देती हैं, कुरान और हदीस के बारे में शुबों में मुबतला कर देती हैं। तो अगर आप उन्हीं को सुनते रहेंगे तो फिर तो आप शुबों में मुबतला हो जाएंगे ना। दूसरी तरफ जो ईमान की मेहनत थी वो तो आपके यहाँ होती नहीं है, ठीक है, ईमान की मेहनत तो मुसलमान घराने में और मुसलमान मुआशरे में हो नहीं रही है आज के जमाने में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दीनदार घरानों में मेहनत किस चीज की हो रही होती है, वो आमाल की मेहनत हो रही होती है, आमाल की मेहनत कि फलाना काम ऐसे करना चाहिए, फलाना काम को ऐसे करना चाहिए, फलाने काम को ऐसे करना चाहिए, ये क्या है, ये आमाल की मेहनत है, ठीक है। लेकिन ईमान की मेहनत क्या होती है कि फलाना काम जो हमें करना है तो ये ऐसे क्यों करना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्यों करना चाहिए, और फलाना काम हमें ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। ये जो क्यों का सवाल है ना, ये क्यों का सवाल जो है ये ईमान की मेहनत कहलाता है, ठीक है, ये ईमान की मेहनत कहलाता है। और कैसे का जो सवाल है, कैसे करना चाहिए, ये आमाल की मेहनत कहलाता है, ठीक है। और हम ये नहीं कह रहे कि आमाल की मेहनत जो है वो नहीं करनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आमाल की मेहनत नहीं करनी चाहिए, आमाल की मेहनत जरूर करनी चाहिए, लेकिन आमाल से ज्यादा अहम मेहनत जो है वो ईमान की मेहनत है, ठीक है। तो पहला जो दर्जा है वो ईमान की मेहनत का दर्जा है, उसके बाद फिर आमाल की मेहनत का दर्जा है। और अगर आपने पहला दर्जा नहीं किया, सिर्फ दूसरा दर्जा किया, तो फिर ये जो दूसरा दर्जा है ना, ये बगैर पहले दर्जे के ये बेबुनियाद होता है, ये बेबुनियाद होता है, इसकी बुनियादें नहीं होती। क्या मतलब, सादा अल्फाज के अंदर इसको इस मिसाल से ही समझाया जाएगा कि भाई आपने अपने बच्चे को वुजू करना सिखला दिया और नमाज पढ़ना सिखला दिया और तिलावत करना सिखला दिया, ठीक है, वुजू करना भी सिखला दिया और नमाज पढ़ना भी सिखला दिया, तरीका सिखा दिया और तिलावत करने का भी तरीका सिखा दिया, ठीक है। लेकिन आपने उसको ये नहीं सिखाया कि आपको वुजू क्यों करना चाहिए, आपको नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, आपको तिलावत क्यों करनी चाहिए, ये नहीं सिखाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने आमाल की मेहनत तो कर ली अपनी औलाद के ऊपर, लेकिन ईमान की मेहनत नहीं करी अपनी औलाद के ऊपर, ठीक है। तो अब जब वो किसी दूसरे जगह पर जाता है जहां पर के उसके काफिराना अकायद के ऊपर मेहनत की जा रही होती है, ठीक है, जहां पर के ना वो जो अपनी साइंस पढ़ाते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं और अपने बड़ों के बारे में बताते हैं और सब ये सब कुछ करते हैं जो आपके स्कूल सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, तो ये स्कूल सिस्टम जो होता है ना, ये बच्चों के ईमान पर मेहनत कर रहा होता है, कौन से वाले ईमान पर? साइंस पर ईमान, साइंसदानों पर ईमान। ठीक है, दुनिया की कामयाबी का जो नजरिया काफिर के पास है, उस नजरिए पर मेहनत हो रही होती है कि भाई यही है कामयाबी का नजरिया। ठीक है, कामयाबी का जो है ना वो यही तरीका है। क्योंकि क्यों वो उसका जवाब देते हैं कि भाई क्यों कामयाबी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, क्यों कामयाबी जो है वो माल दौलत में है। उसकी वजह यह है कि माल दौलत से आपके काम बनते हैं, राइट। साइंस जो है वो आपको दुनिया की जो हकीकत है वो बताती है, और साइंसदान जो है उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके और बहुत जो है वो रिसर्च करके और बहुत अकल इस्तेमाल करके उन्होंने ये सारी की सारी साइंस जो है वो इस्टेब्लिश करी है, डेवलप करी है। ठीक है, तो ये जो है ना बच्चों के जहनों के अंदर जो क्यों का सवाल होता है उसका जवाब वो अपने एजुकेशन सिस्टम में दे रहे होते हैं। बच्चों के जहनों में एक सवाल आता है क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि भाई मैं जो काम करूं तो मैं क्यों करूं ये वाला काम। ठीक है, तो इसका जो एजुकेशन सिस्टम है, राइजुल वक्त एजुकेशन सिस्टम, इसका जवाब देता है कि भाई इसलिए क्योंकि ये देखो कितनी अच्छी चीज है, ये कितने मेहनतों से डेवलप की गई है, ये कितनी कामयाबी का जो है वो पेश खेमा है। तो एजुकेशन सिस्टम जवाब देता है उनके क्यों का। ठीक है, तो उनके जहन के अंदर फिर इस एजुकेशन सिस्टम, इस यानी जो मटेरियलिस्टिक सिस्टम है उसकी अजमत बैठ जाती है, उसकी इज्जत अजमत और मोहब्बत बैठ जाती है आपकी औलाद के दिल में। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जहां दीन की बात आती है तो वहां पर जो है ना वो क्यों का जवाब नहीं दिया जा रहा होता। वहां पे सिर्फ ये होता है कि इस बात को ऐसे करना है, इस बात को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। ठीक है, बस ये हो गया आपका पूरा का पूरा दीन मुकम्मल, कैसे का जवाब, हाउ का जवाब। ठीक है, लेकिन क्यों करना है इसका जवाब नहीं कोई देता। ठीक है, यानी इसका बात ही कोई नहीं करता, जवाब देना तो दूर की बात, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, तो फिर यहां पर अल्लाह पर ईमान और रसूल पर ईमान ये नहीं बन रहा होता। ठीक है, तो फिर हमारी औलाद जो है वो दीन के बारे में वसवसों में मुबतला हो जाती है, शकूक व शुभात में मुबतला हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर सहाबे कराम के साथ मामला हुआ था, सिवाय उन सहाबे कराम के जो के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से पूछ लिया कि ऐसा क्यों है, तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद जो है वो दूसरों को भी फायदा हो गया कि दूसरों के भी अगर शकूक थे तो वो भी दूर हो गए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि या तो पक्के अपने ईमान पे मेहनत करो कि भाई क्यों क्यों ये काम करना है, क्यों ये काम करना है, क्यों ये काम करना है। ठीक है, और अगर तुम अभी तक पक्के तुमने अपने इस ईमान पे मेहनत अभी नहीं करी हुई है तो तुम कम से कम अपनी निस्बत मजबूत बनाओ अपने बड़ों के साथ। ठीक है, जिनका ईमान मजबूत है उनके साथ अपनी निस्बत को, अपने ताल्लुक को, अपने कनेक्शन को मजबूत बनाओ, ताकि जब तुम्हारे दिल में कोई वसवसे आ रहे हों किसी बात के बारे में, ठीक है, तो तुम उनके पास जाकर के पूछ सको, उनसे पूछ लो जाकर के, तो वो तुम्हें जो है वो बात समझा देंगे। ठीक है, तुम्हारा वसवसा दूर हो जाएगा। तो या तो ईमान को मजबूत बनाओ, अगर ईमान मजबूत तुम नहीं बना पा रहे हो, फॉर वॉट एवर रीजन तुम नहीं मजबूत बना पा रहे हो, तो कम से कम अपनी निस्बत को तो मजबूत बनाओ ना, अपने ताल्लुक को तो मजबूत बनाओ ना। ठीक है, किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर? सब सब समझ में आ गया सबको? किसी ने सवाल किया, किसी ने बल्कि कमेंट लिखा है कि क्यों का जवाब हम देते हैं कि बस मैं कह रही हूं ना। ठीक है, ये हम जवाब देते हैं कि बस मैं कह रही हूं, ठीक है? तो ये जवाब जो हम देते हैं ना कि बस मैं कह रही हूं, तो ये जवाब जो होता है वो उस वक्त फायदेमंद होता है। ये जो कहना है ना माँ का अपने बच्चे को कि बस मैं कह रही हूं इस वजह से ये काम करो, ये जवाब फायदेमंद हो सकता है, ठीक है? अगर अगर का जवाब आप बताएं, ये जवाब फायदेमंद हो सकता है बच्चे के लिए, अगर अगर का जवाब आप बताएं। अगर माँ दीनदार हो, नहीं ना, ये तो मसला है, माँ दीनदार, अगर हाँ ये जवाब सही है कि अगर बच्चे का माँ के ऊपर भरोसा हो कि माँ जो बोलती है वो सच बोलती है, वो सही बोलती है, अगर माँ ने अपने ऊपर बच्चे का एतमाद बनाया हुआ हो, तब ये बिल्कुल सही जवाब है कि तुम ये काम इसलिए करो क्योंकि मैं बोल रही हूं, क्योंकि मैं कह रही हूं तुम्हें, ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगर माँ ने अपने बच्चे का अपने ऊपर एतमाद बनाया हुआ हो, ठीक है, तब ये जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन अगर माँ ने अपने बच्चे का भरोसा अपने ऊपर नहीं बनाया हुआ है, तो फिर ये जवाब बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? तो बात एतमाद की है ना, आपने तो अपने ऊपर एतमाद बनाए ही नहीं है, आप तो ऐसी हरकतें करती हैं कि बच्चा जो है ना वो कहता है कि यार इनसे तो बात करना ही ठीक नहीं है, ठीक है, इनसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो दूसरी दूसरी तरफ जाकर के देखता है कि कहीं और से फिर वो अपने सवालों के जवाब देता है, ठीक है? हाँ, बच्चे पे डाल दो ना सारा का सारा कसूर, बच्चा फरमा बरदार हो, माँ बेशक फरमा बरदार ना हो, ठीक है, बच्चा फरमा बरदार हो तो बच्चा जो है ना फिर वो बात मान लेगा। बच्चा फरमा बरदार कैसे बनेगा? बच्चा फरमा बरदार कैसे बनेगा, ठीक है? बच्चा पैदा तो नहीं होता फरमा बरदार, बच्चे को तो फरमा बरदार बनाने के लिए माँ को अपना काम करना होता है ना, माँ के ऊपर बच्चा ट्रस्ट करता हो तो वो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट करने वाली हो, ठीक है? अच्छा, इन्होंने लिखा कि हमारे खानदान की एक बच्ची ने एक दफा पर्दे के मुतालिक बताया कि हमारे बड़ों ने सारी उम्र ये नहीं समझाया कि पर्दा क्यों करना है, इसलिए मैं इसके खिलाफ थी, ठीक है? अच्छा, ये जुमला जो है ना किसी ने यहाँ पर लिखा है, तो इस जुमले को जरा सा डाइसेक्ट करते हैं। हमारे खानदान की एक बच्ची ने एक दफा पर्दे के मुतालिक बताया कि हमारे बड़ों ने सारी उम्र ये नहीं समझाया कि पर्दा क्यों करना है, इसलिए मैं इसके खिलाफ थी, ठीक है? तो उसका जवाब क्या होना चाहिए, बच्ची को क्या बताना चाहिए था बड़ों को कि पर्दा क्यों करना है, इसका जवाब ये बताएं। बच्ची जो है ना वो अपने खानदान में पली पैदा हुई, ठीक है, अपने घराने में पैदा हुई, वो खानदान वो अपने घर में बड़ी हो रही थी, ठीक है? तो उसको बड़ों ने कभी नहीं बताया कि पर्दा क्यों करना चाहिए, तो इस वजह से उसने पर्दा नहीं किया, वो पर्दे के खिलाफ थी, ठीक है? तो बड़ों को क्या बताना चाहिए था अपनी बच्ची को, पर दे क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों क्यों बता क्या बताना चाहिए था बड़ों को कि पर्दा क्यों करना चाहिए? पर्दा अल्लाह का हुक्म है, चाहिए पर्दा अल्लाह को राजी करने के लिए, ठीक है? तो पहले तो बच्चे को बताना था ना कि अल्लाह कौन है, ठीक है, अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है और अल्लाह ताला क्या है और अल्लाह ताला का हुक्म क्यों मानना चाहिए। पहले तो ये बताना चाहिए था ना कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला क्या करते हैं हमारे लिए जिसकी वजह से हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, ठीक है? पहला तो ये बताना था ना, फिर उसके बाद बहुत आसान सी बात थी कि बेटा पर्दा जो है ना ये अल्लाह का हुक्म है, ये उस अल्लाह का हुक्म है जिसके बारे में अभी तुम्हें बताया था हमने, ये उसका हुक्म है, ये उसकी रजा है, ये उसकी चाहत है, ठीक है, ना कि उस बच्ची को ये बताया जाए कि देखो अमेरिका के मुआशरे में पर्दा नहीं होता, तो इस वजह से देखो अमेरिका के मुआशरे में कितनी गंदी गंदी बातें होती हैं, वो गंदी गंदी बातें खोल खोल के जो है ना वो बच्ची को बताई जा रही हैं। ठीक है कि देखो अमेरिका के मुआशरे में इतनी गंदी बातें होती हैं ना क्योंकि वहां पे पर्दा नहीं होता, और देखो बाकी अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है या पाकिस्तान से है या कहीं से भी है, तो पाकिस्तान के मुआशरे में पर्दे के बारे में जो लोग पर्दा नहीं करते हैं, तो पर्दा ना करने की वजह से जो है ना वो देखो कितने नुकसान होते हैं और कितने नुकसान होते हैं और कितना वो ये होता है कितना वो होता है। नहीं, ये बच्ची तो घर में पैदा हुई थी ना, ये बच्ची तो घर में पल बढ़ रही थी ना। ठीक है, तो आप 7 साल की उम्र की बच्ची को या 6 साल की उम्र की बच्ची, 7 साल की, 8 साल की उम्र की जो बच्ची है जो कि अभी इस दहलीज पर कदम रख रही है, ठीक है, बुलूगत की दहलीज पर अभी कदम रख रही है, शी विल बी बालिग इन अ कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है, आप उसको ये सारी गंद और खराफात तो नहीं बताएंगे ना कि अमेरिका के मुआशरे में जो है वो क्या होता है और यूरोप के मुआशरे में क्या होता है बेपर्दगी की वजह से, और ये सब या उसको तो नहीं बताएंगे ना ये बातें, आप किसको बताएंगे, 20 साल या उससे ऊपर कोई बच्ची हो, या चलो 18 16 17 18 साल की बच्ची हो, ठीक है ना, जिसको के किसी ने 7 8 साल की उम्र में अल्लाह के बारे में नहीं बताया था और अल्लाह के अहकाम के बारे में नहीं बताया था, तो अब वो जब बड़ी हो गई तो उसको फिर आप अमेरिका की खराफात बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोटी बच्ची को तो आपने अमेरिका की खराफात नहीं बतानी ना, बेपर्दगी के गुनाह के जो मुआशरे में असरात पैदा हो रहे हैं उसको तो ये नहीं बताना है ना, उसको तो सीधा सीधा ये बताना है कि अल्लाह कौन है, ठीक है, अल्लाह ताला के हमारे ऊपर क्या एहसानात हैं, ठीक है, ये बात बतानी है बच्चे को, ठीक है, छोटी बच्ची को ये बात बतानी है, और जो है वो अल्लाह का हुक्म ये हम तक कौन लेकर के आए, नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए, वो कौन है, वो क्या थे, वो कैसे थे, ठीक है, और ये जो हुक्म है ना कि पर्दा करना है औरतों ने बच्चों ने, तो ये नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए जो कि सच्चे नबी हैं, जो कि सच्चे हैं, उन्होंने जो हमें बातें बताई ना वो वही बातें थी जो कि अल्लाह ने उनको बताई, ठीक है, तो इस वजह से हमें पर्दा करना है, ये ईमानी तरबियत होती है ना। अब बच्ची बोले कि मुझे कोई इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बताओ पर्दा क्यों करना चाहिए क्यों नहीं, मुझे किसी बड़े ने इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स नहीं बताए पर्दे के, इस वजह से मैं पर्दे के खिलाफ थी, तो ये गलत बात कर रही है वो बच्ची, वो बच्ची ये गलत बात कर रही है, उस बेचारी को समझ ही नहीं है, ठीक है, उस बेचारी को समझ ही नहीं है कि पर्दे का हुक्म जो है ना उसके ऊपर अमल करने के लिए आपको ये सारी चीजें नहीं पता करनी होती, बल्कि सिर्फ ये पता करना होता है कि अल्लाह का हुक्म है जो कि सच्चे नबी के वास्ते से हम तक पहुंचा है, ठीक है, वो आपके माँ बाप ने आपको नहीं बताया, वो आपके खानदान के बड़ों ने आपको नहीं बताया जो उनका कसूर है, बल्कि उठा करके आपको जो है ना वो स्कूल सिस्टम के अंदर दाखिल कर दिया जहां पे बेपर्दगी वॉज द नॉर्म, राइट, बेपर्दगी वॉज द नॉर्म, और जो बेपर्दा औरतें थीं उनको कामयाब समझा जाता था और उनको जो है ना वो उनके जैसा बनने के लिए आपके माँ बाप आपको एनकरेज कर रहे होते थे, उन बेपर्दा औरतों कि देखो ये कितनी अच्छी हैं, ये मैडम कितनी अच्छी हैं, ये टीचर कितनी अच्छी हैं, हालांकि वो बेपर्दा हैं, अल्लाह का हुक्म तोड़ रही हैं, लेकिन उनकी तारीफों के पुल बांध रही हैं आपकी वालदा आपके सामने, राइट, आपके अब्बू उन औरतों के तारीफों के पुल बांध रहे हैं जो कि अल्लाह के हुक्मों को ताख तो ताराज कर रही हैं, ठीक है, तो आपकी बेईमानी वाली तरबियत तो आपकी वालदैन ने करी लेकिन ईमानी तरबियत तो आपके वालदैन ने नहीं करी, इस वजह से आप पर्दे के खिलाफ बनी ना, ना ये कि आपको जो है वो कोई और तफसीली और टेक्निकल टेक्निकलिटीज वगैरह जो आपको समझाई जा रही होती है पर्दे के बारे में, ठीक है, वो तो आपको समझाने की उम्र ही नहीं थी, ठीक है, वो तो भाई जो उम्र गुजार चुकी होती है ना जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ, तो फिर उनको ये सारी बातें बताने की जरूरत पड़ती है कि देखो मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं वो बुराइयां अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की वजह से हैं, और किस वजह क्यों अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की वजह से वो बुराइयां हैं, ये सारी तफसीलात तो बड़ों को बताने की होती है ना, बच्चों को भी थोड़ी सारी चीजें बताई जाती है, ना बताने की जरूरत होती है उनको, अल्लाह कहे समझ में आ रही हो बात। ठीक है, तो मुशरिकीन के वसाविस की तरफ इल्तफात ना करो और अपने बच्चों को मुशरिकीन की तरफ धक्के मत दिया करो। अपने बच्चों को मुशरिकीन की तरफ धक्के मत दो कि वो जाकर के सुने अपने बच्चों को, वो मुशरिकीन को जाके सुने आपके बच्चे। ठीक है, पहले अल्लाह ने के बारे में बताना, अल्लाह ने हमारे लिए क्या किया है ये बताना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना, फिर अल्लाह के हुक्म टूटने की सदा बताना, यानी अल्लाह की नाराजगी बताना। ठीक है, कि भाई आप जो आपके साथ फेवर करता है, जो आपके ऊपर जो है वो एहसानात करता है, तो क्या ये बात अच्छी है कि आप उसको उसकी बात ना माने? ठीक है, तो आपके ऊपर एहसानात किसने किए? स्कूल की टीचर ने नहीं किए आपके ऊपर एहसानात, आपके ऊपर एहसानात जो है वो अल्लाह ने और उसके रसूल ने किए हैं। अल्लाह ने और उसके रसूल ने किए हैं ये एहसानात, जो भी आपके पास है वो उनके वास्ते से मिला हुआ है ना आपको। ठीक है, नबी सल्लम के वास्ते से मिला है, और आया कहाँ से? अल्लाह की तरफ से आया है, सब कुछ आपके पास जो है वो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है, तो उनकी खिलाफ वर्जी, उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना, ये तो यानी बहुत ही बुरी बात है बेटा, ये बच्चा, ये तो बहुत ही गंदी बात है ना, इतनी बुरी बात है। ठीक है, कि आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, इसको ईमानी तरबियत कहते हैं भाई। ठीक है, हम जो है ना वो सिर्फ हाउ 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 करते रहते हैं, हाउ ये, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, बस खलास। ठीक है, पर्दे का हुक्म कुरान में आया, वो भी बताना है और माहौल भी बनाना है। ऑफकोर्स आपको उस गंदे गरीज माहौल के अंदर नहीं भेजना अपने बच्चों को, जहाँ पे कि हर सारी तरबियत पर्दे के खिलाफ हो रही हो आपके बच्चों की, जहन साजी हो रही हो आपके बच्चों की। ठीक है, हर बंदा अपना स्कूल बनाए ना, सारी मुसीबत ये है कि नहीं, जो दूसरे ने बनाया हुआ है उधर मैंने भेजना है, मैंने खुद तो कोई काम करना नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने अगर शऊर अता फरमाया, दीन की समझ अता फरमाई, अब आप स्कूल बनाए ना अपना। हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह किधर के थे? पाकिस्तान के तो नहीं थे वो, सऊदी अरब में तो वो पैदा नहीं हुए थे, मक्का मुकरमा में तो वो पैदा नहीं हुए थे, और जिंदगी उन्होंने मदीना मुनव्वरा में तो नहीं गुजारी थी। कहाँ पैदा हुए थे? इंडिया में पैदा हुए थे, और सारी जिंदगी उन्होंने इंडिया में गुजारी। वो इंडिया के मुसलमानों को कहते रहे सारी जिंदगी, अपने मकतब बनाओ, अपना निजाम बनाओ, और ये नहीं कि हुकूमत से रजिस्टर करना जरूरी है और ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। भाई छोटे से काम शुरू करो, अपने घर से काम शुरू क्यों नहीं करते? नबी अलैहिस्सलाम ने कहाँ से काम शुरू किया था? नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी से काम शुरू किया था? कहाँ से काम शुरू किया था नबी अलैहिस्सलाम ने? मस्जिद नबी से काम शुरू किया था, 13 साल के बाद मस्जिद नबी पहुंचे थे नबी अलैहिस्सलाम। काम शुरू अपने घर से किया था भाई, अपनी बीवी से शुरू किया था, अपने घर के रहने वाले खादिम से शुरू किया था, अपने घर के रहने वाले जो है वो कजन से शुरू किया था, अली रज़ी अल्लाह तआला, अपने सबसे करीबी दोस्त से काम शुरू किया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। हम चाहते हैं कि हम काम शुरू जो है ना वो अच्छी सी इमारत से काम शुरू करें, राइट, और जो है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड चीज होगी और गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो है वो सर्ट ये मिला हुआ होगा, वो मिला होगा, हम वहां से काम शुरू करेंगे, घर से काम नहीं शुरू करना हमने। ठीक है, तो अल्लाह के नबी की जो है वो तरतीब को उल्टोगे तो तुम्हारे साथ खैर होगी, कैसे खैर हो सकती है तुम्हारे साथ? ठीक है, होम एजुकेशन, ठीक है, होम स्कूलिंग आप कहें तो आपकी मर्जी है, होम एजुकेशन, ये जो ताली ईमानी तरबियत की बात हो रही है, ये जो फिर उसके बाद आमाली तरबियत की बात हो रही है, ये होम एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, जिसको आप कह लें होम स्कूलिंग, बेशक हमने हमें क्या भाई, अंग्रेजी के टर्म में मर्जी है आपकी, आप होम स्कूलिंग कहें उसको, तो तालीम एट होम होती है ना, उसको आपने किया नहीं, उठा के आउटसोर्स कर दिया किसी दूसरे को, काफिर को, दुश्मन को, राइट, लॉर्ड मुंह काले ब्लैक फेस की बनाई हुई तालीमी निजाम को आपने सारा के सारा उठा के अपनी जो सबसे कीमती मता थी हिदायत के बाद, आप एक सबसे कीमती मता अपनी मता जो होती है वो अपनी हिदायत होती है, फिर उसके बाद किसकी हिदायत होती है? अपनी औलाद की हिदायत, राइट। तो इतनी अहम तरीन चीज को जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत के तौर पे दी थी वो उठा के आपने हवाले कर दिया, सिस्टम के हवाले कर दिया आपने। ठीक है, आप ये वाली क्लास खुद भी सुन लें और दूसरों को भी सुना दें, बस काफी हो जाएगी। ठीक है, मुझे आपको बैठ करके दर्स कुरान के अंदर ये नहीं पढ़ाना कि साइंस कैसे पढ़ाते हैं और इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं और उर्दू कैसे पढ़ाते हैं और अरबी कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये खुद करें ना ये वाला काम, हम क्यों करें ये वाला काम? ठीक है, जो हमारे करने का काम है वो ये है कि आपको कॉमन सेंस रिकवर हो जाए, आपका आपके जहन में कॉमन सेंस रिकवर हो जाए कि भाई ये क्या इसके अंदर मुश्किल बात है, समझना इस बात को, कॉमन सेंस है ना ये, ठीक है। साइंस मैथ ये खुद पढ़ाएं, अगर खुद नहीं पढ़ानी आती तो प्राइवेट टीचर्स हायर करें इसके लिए, अपने दोस्तों से बात करें, ठीक है, लाइक माइंडेड लोगों का एक हलका बनाएं और वहां पे जिसको जो चीज आती है वो बच्चों को सिखाएं, और लोगों के प्रेशर से जो है ना वो अपने आप को निकालें कि लोग प्रेशर डालेंगे ऊपर, तुम अपने बच्चों को जाया कर रही हो, तुम अपने बच्चों को जाया कर रहे हो, उसको वो सोशलाइज नहीं कर सकेगा, उसको जो है वो कुछ आएगा नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा। ये लोग जो है ना शैतान होते हैं, या शैतान का काम कर रहे होते हैं, ये प्रेशराइज कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके प्रेशर से निकलने के लिए अपनी निस्बत को मजबूत बनाएं, ठीक है, जो आपको इनके खिलाफ समझा रहे हैं उनसे अपनी निस्बत को मजबूत बनाएंगी तो फिर यू विल बी एबल टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ शयातीन, ठीक है। जैसे यहां पर साहबे कराम के ऊपर वो प्रेशर डालते हैं ना, अकली प्रेशर डाल रहे थे कि देखो अल्लाह के बना के मारे हुए को तो तुम खा नहीं रहे हो और अपने मारे हुए को तो तुम खा रहे हो, ये वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे थे साहबा इकराम के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने अपनी नस्बत नबी अलैहिस्सलाम से मजबूत बनाई, नबी अलैहिस्सलाम ने बात क्लियर कर दी, भाई अल्लाह का हुक्म है ये, और अल्लाह को तुमने जो है वो खालिक और मालिक और कादिर माना है कि नहीं माना, मुझे अल्लाह का नबी माना है कि नहीं माना, ठीक है, तो तुम अल्लाह की बात मानो, मैं तुम्हें जो अहकाम बता रहा हूँ तुम उसको मानो, इनकी तरफ इल्तफात ना करो, ठीक है। सारी दुनिया में लोग कर रहे हैं, एक हम ही जो है ना वो दीनदार मुसलमान, उन्हीं को ये बात समझ में नहीं आ रही, काफिर अमेरिका में कर रहे हैं होम स्कूलिंग, राइट, यूरोपियंस जो है वो यूरोप में बैठ के कर रहे हैं होम स्कूलिंग, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं, एक मुसलमान को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ईमान की हिफाजत के लिए जो है वो होम स्कूलिंग कैसे करी जा सकती है, राइट, क्योंकि मुसलमान के नजदीक ईमान की हैसियत ही कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा हैसियत है तो आमाल की हैसियत है, ईमान की कोई हैसियत ही नहीं, ठीक है ना, उनके नजदीक जो है वो अपने मकासद की हैसियत है, वो उसके लिए कर रहे हैं ये वाला काम, सीख लेते हैं, सीखते हैं, हजार आज के दौर में जिस तरह आप जूम पे बैठ करके क्लास ले रही हैं, हजारों मील दूर से बैठ करके क्लास ले रही हैं, तो उसी तरीके से तो होम स्कूलिंग के लिए जो है वो रिसर्च करना कौन सा मुश्किल काम है, इसी इंटरनेट को आप उसके रिसर्च के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसके जरिए से जो है वो आप जो है वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ हुकअप नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्या लिखा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम में एडमिट करवा दें तो साथ में हम खुद अपने तौर पे उनको ईमानी तरबियत इसलिए नहीं दे सकते कि क्योंकि वहाँ बच्चे मुतासर होके कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाते, दहरी हो जाते हैं, कंफ्यूज जो है ना ये बड़ा हल्का वर्ड लगता है, ये बड़ा हल्का वर्ड लगता है, नहीं ये इट्स मच मोर सीरियस देन दैट, इट्स मच मोर सीरियस देन दैट, ठीक है। अच्छा आगे चलें, और तहकीक इस जवाब की है कि उसूल के इस बात के लिए तो दलाइल अकलिया दरकार है, और बात साबित हो जाने उसूल के आमाल फुरू में सिर्फ दलाइल नकलिया काफी हैं, ठीक है, तो ये बहुत तफसील के साथ जुमे के दरस में बात हो गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप पे भेजी जा चुकी है, उसको सुन लें, ठीक है, कि ये दलाइल अकलिया और दलाइल नकलिया जो है ना इसकी क्या तफसील है, ये फ्राइडे के दर्स के अंदर मौजूद मौजूद आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अकलियात की जरूरत नहीं है फुरुयात के लिए, अकलियात के लिए, बल्कि बाज़ औक़ात मुज़िर होती है ये कि इससे शुबहात के दरवाजे खुलते हैं, भाई उसूली बात है, अल्लाह का हुक्म है जिसको तुमने परवरदिगार माना है, और ये हुक्म पहुंचा कैसे है, नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से पहुंचा है जिसको तुमने अल्लाह का रसूल माना है, बस खलास हो गई बात खत्म, ठीक है। अब जो है वो मैं पाँव क्यों धोऊं और मैं जो हूं वो ये क्यों करूं और मैं वो क्यों करूं, इसको ऐसे क्यों करूं, उसको वैसे क्यों ना करूं, भाई मैं कह रही हूं एतमाद बना लिया ना तुमने मेरे ऊपर, अब मेरी बात मानो, ठीक है, रसूल कह रहे हैं, तुम कह रहे हो ना रसूल जो है वो सच्चे हैं सादिक हैं अमीन हैं, अब उनकी बात मानो, बस खलास हो गई बात खत्म, ठीक है। लेकिन ظاہر है ये हम नहीं करते, दूसरी तरफ जो है वो हम भेज रहे होते हैं, और दूसरी तरफ से उनकी पूरी बेहतरीन किस्म की जहन साजी, यानी बदतरीन किस्म की जहन साजी एक्चुअली हो रही होती है। ठीक है, या सारी की सारी मसला पड़ जाता है फिर उसके बाद, तो शुबहात के दरवाजे खुलते हैं इससे। ठीक है ना, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे दीन में ये किस किस्म की बेवकूफी की बात है, ये किस किस्म की बेवकूफी की बात है। अब जो है वो आपका बच्चा जो होता है वो दीन के ऊपर शक में मुब्तला हो जाता है, और शक से ईमान खत्म हो जाता है। शक से, ये जो कंफ्यूज है ना, ये दिस इज अ वेरी वेरी पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड है ना, पॉलिटिकली करेक्ट, जिससे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हकीकत क्या है, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए शक, शक जो कि अरबी का लफ्ज है, और शक जो है ये ईमान को खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। अब ये बंदा काफिर हो जाता है जो शक में मुब्तला हो गया। ठीक है, नाम वाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके कहने पे नमाज भी पढ़ रहा होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काफिर हो चुका है अगर वो शक में मुब्तला हो गया। ठीक है, क्योंकि फुरू में दलील कतई की कोई सबील नहीं, फुरुआत के अंदर यानी डिटेल्स के अंदर जो है ना, ये अकली दलील की कोई रास्ता ही नहीं। अलबत्ता अगर कोई तालिब हक जो याए शिफाए तल्ब हो, उसके रूबरू इकनाइयात व खिताबियात का, ये सब हम जुमे में काफी बात कर चुके हैं, तो अब दोबारा इसको, वैसे भी टाइम खत्म हो रहा है क्लास में। लेकिन जब ये भी ना हो बल्कि मुजादला ही हो, तो अपने काम में लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे बेवकूफ लोगों के साथ बहस मुबहसे में नहीं पढ़ना चाहिए, और मोतरिज की तरफ इल्तफात नहीं करना चाहिए, एतराज करने वालों की तरफ जो है ना वो बिल्कुल आप तवज्जो ना करें। हाँ, अगर मोतरिज किसी फरा का अकली कतई दलील के मुखालिफ होना साबित करना चाहे, तो उसका जवाब बजम्मा मुद्दई हक होगा। ठीक है, अगर मोतरिज यानी इतराज करने वाला जो है ना वो साबित करने के ऊपर तुला हुआ है, ठीक है, अपनी अकली दलीलें ला करके, अपने तौर पे अकली दलीलें बना करके जो है ना वो किसी फरा का अकली कतई दलील के मुखालिफ होना साबित करना चाहे, तो उसका उसका जवाब जो है वो बजिम्मे मुद्दई हक होगा। तो वो जो मुद्दई हक जो है ना, वो उसको उसका जवाब देना होगा। लेकिन मुद्दई हक से यहाँ पर मुराद जो है ना, जो कि इल्म के साथ जिसके पास ये दलाइल मौजूद हों, उसके जिम्मे होगा जवाब देना। ठीक है, हमारे आपके जैसे लोगों के जिम्मे नहीं है कि जो कोई आपका कजन आ जाए, का आपका कोई रिश्तेदार आ जाए, और वो जो है ना वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वुजू के अंदर पैर धोना जो है ना ये बिल्कुल बेकार चीज है। ठीक है, ये अकल से साबित नहीं किया जा सकता कि वुजू के अंदर पैर क्यों धोना, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ खाली। अब आप बैठ जाएं, लग जाएं उसको दलील से साबित करने की कि नहीं, पैर धोना जो है ना ये इस अकली दलील के मुताबिक है, और मैं तुम्हें अकल से साबित करती हूँ कि पैर धोना जो है वुजू के अंदर ये बड़ी अकली चीज है। नहीं, आपके जिम्मे नहीं है। ठीक है, ये करेंगे तो उलमाए हक करेंगे, जो जिनका काम ही जो है ना वो इस किस्म के
ओके okay.
आतंक फिरकों का मुकाबला करना है, जिन्होंने इसके अपनी जिम्मेदारी उठाई हुई है वो ये काम करेंगे। ठीक है, हम जैसे जिनका इल्म ही नहीं है, और अकल की भी इतनी हमने कोई ऐसी किताबें नहीं पढ़ी हुई या साथ से सीखा हुआ नहीं है, ये हमारे जिम्मे नहीं है, हमारा काम है अपने काम में लगे रहना। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसको बातिल फिरके कहते हैं, बातिल फिरकों का जवाब जो है ना फिर वो इल्म कलाम के जो बड़े होते हैं वो फिर बातें फिरकों के जवाब देते हैं, मगर मुशरिकीन के शुबों में इसका एहतमाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो इस किस्म की शुबहात वगैरह करते रहते थे ना, इसमें इन दोनों केसेस का एहतमाल नहीं है कि वो बाकायदा अकली कती दलील के खिलाफ साबित कर रहे हो किसी चीज को, या जो है ना वो तालिब हक हों, वो तालिब हक होते ही नहीं थे। ठीक है, वो तो खामखा बस रोड़े अटकाने के लिए और एतराज करने के लिए और लोगों को जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ये सारी बातें कर रहे होते थे, तो इस वजह से उनको फिर अल्लाह ताला ने जवाब में कोई अकली दलील नहीं दी, यानी तफसीली अकली दलीलें नहीं दी, इसलिए इस जवाब में सिर्फ मुसलमानों को बाकायदा मज़कूरा बाला खिताब है कि ऐसी खराफात पर तुम नजर मत करो, हक के मोतकिद और आमिल रहो। इस बिना पर इस मकाम में मुशरिकीन के शुबों का जवाब सराहतन मज़कूर ना होना महल शुबो नहीं हो सकता, कि भाई यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है वो मुशरिकीन के शुबों का कोई सराहतन एक्सप्लिसिटली जवाब नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया जवाब? भाई इसलिए कि मुशरिकीन जो है वो तालिब हक थे ही नहीं, और अल्लाह ताला को नहीं पता होगा ये बात, और किसको पता होगी कि ये लोग जो एतराज कर रहे हैं ये तलब हक के लिए कर रहे हैं कि बगैर तलब हक के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला को पता था कि ये नहीं कर रहे तलब हक के लिए, अल्लाह ताला ने कोई ऐसे सराहतन जवाब इन लोगों को दिया ही नहीं। ठीक है, मगर इस पर भी इसकी तरफ इशारा कर दिया, जहां कुलू में दुके रस्मुल्लाही और ला ताकुलू में लम युज़कर इस्मुल्लाही मज़कूर है, तो वहां पे जवाब दे दिया कि बस जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है तो उसको तुम खाओ, और जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है उसको तुम मत खाओ। और ये आदत से और दूसरे दलाइल से मालूम होता है कि दुखे रस्मुल्लाही ज़बह के वक्त होगा, और लम युज़कर इस्मुल्लाही के तहक्कुक की दो सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, यानी जब मुसलमान ज़बह करता है ना, तो वो मुसलमान अपनी जुबान से अल्लाह का नाम लेता है ना, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। तो ये कहाँ से ये अल्फाज निकलते हैं? ये ज़बह करने वाले इंसान के जुबान से अल्फाज निकलते हैं। ठीक है, बकरा तो नहीं है एक बात कह रहा होता बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ठीक है, बकरे की जुबान से तो ये अल्फाज नहीं निकल रहे होते, करने वाले के यानी छुरी चलाने वाले के जुबान से निकल रहे होते हैं ना। ठीक है, इसी वजह से जो रिकॉर्डेड बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर है ना, उसके ऊपर उलमा का इत्तेफाक नहीं है कि रिकॉर्डिंग वो टेप रिकॉर्डर चला दिया बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद हो रही हैं, और जो काटने वाला है वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेप रिकॉर्डर पे तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी, बल्कि नहीं, काटने वाले की जुबान के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर है कि नहीं है। ठीक है, तो जब वो ज़बह करेगा तभी होगा ना उसके जुबान के ऊपर ये। तो आदत से और दूसरे दलाइल से, यानी आम आदत तो यही है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर काटने वाले की जुबान पे उसके इख्तियार से चलता है। ठीक है, ज़बह के वक्त होता है। और लम यूज कर इस्मुल्लाही जो है, तो इसके ऊपर जरा सा हम गौर करें, तहकीक करें, यानी दिमाग लड़ाएं इसके ऊपर, तो दो सूरतें बनती हैं इसकी। एक सूरत यह है कि अदम ज़बह, के ज़बह किया ही नहीं जा रहा, वो खुद से मर गया, चोट लगने से मर गया या बीमारी की वजह से मर गया। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर उसके ऊपर किसी ने नहीं पढ़ा, सही है, वो तो खुद अपनी जिसको कहते हैं अपनी मौत मरना, उस तरह से मर गया ना, तो अदम ज़बह। ठीक है, यानी ज़बह का ना होना। और दूसरी सूरत क्या है? अदम जिक्र इंद ज़बह, अदम जिक्र इंद ज़बह। ठीक है, कि ज़बह तो किया जा रहा था लेकिन पढ़ा नहीं गया बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये दूसरी सूरत हो सकती है। बस हासिल जवाब शुबों का ये हुआ कि हिल्लत का मदार मजमुआ दो अमर का है, कि जानवर हलाल होगा, इसका दारो मदार जो है ना वो दो बातों का मजमुआ है, दो बातों का मजमुआ, ये इनके ऊपर हिल्लत का यानी हलाल होने का दारो मदार है। एक जबह यानी जबह का अमल करना, ठीक है, जो कि नजिस खून को निकाल कर नजासत से पाक कर देता है। ठीक है, यानी जब जो चार रगें होती हैं गर्दन के अंदर, उन चार में से जो है ना वो तीन को काटा जाता है या चार को काटा जाता है, तो फिर इससे क्या होता है कि खून जो है वो बदन में से गश आउट करता है जानवर के। ठीक है, और वो जो बहता हुआ खून होता है ना वो नजासत का सबब होता है, वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है बदन में से। ठीक है, तो फरमाते हैं कि और वो नजासत ही सबबे ममानियत थी। ठीक है, कि भाई जानवर हराम जो है ना वो इस खून की वजह से है, तो वो सारा का सारा बाहर निकल गया। तो ये एक अमर हुआ जिस पर हलाल होने का दारोमदार है। और दूसरा अमर वो क्या है? अल्लाह का नाम लेना, कि वो मुफीदे बरकत है, कि जो कि हैवानाते दमविया में शर्त हिल्लत। ठीक है, यानी जो खून वाले जानवर है ना, तो उन को हलाल करने की शर्त क्या है कि उनके ऊपर अल्लाह का नाम भी पढ़ा जाए, एक तो ज़बह किया जाए, दूसरा उनके ऊपर अल्लाह का नाम भी पढ़ा जाए। ठीक है, इस अल्लाह के नाम से क्या होता है कि शैतान का उसके अंदर अमल खत्म हो जाता है और अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, और ज़बह करने का फायदा क्या होता है कि फिजिकल नजासत जो होती है वो उसमें से बाहर निकल जाती है, जिसको खून कहा जाता है, बहता हुआ खून। ठीक है, किसी चीज के वजूद के लिए माने का दूर करना और शर्त का वजूद दोनों अमर जरूरी हैं, बस इस मजमुए से इल्लत साबित होगी। ठीक है, कि जानवर हलाल कब होगा जब ये दोनों चीजें मौजूद होंगी। पहली चीज क्या, मानेअ का दूर करना, यानी वो चीज जो कि उसको हलाल होने से रोक रही थी, वो क्या चीज थी, बहते हुए खून का होना। ठीक है, तो बहते हुए खून को आपने जबह करने के अमल से दूर कर दिया। ठीक है, और दूसरी चीज शर्त का मौजूद होना, वो शर्त क्या है, अल्लाह का नाम लिया जाना। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें हो गई तो दोनों अमर जमा हो गए जिनके ऊपर हलाल होने का मदार था, दारो मदार था। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें हो गई तो जानवर हलाल हो गया। ठीक है, तो फरमाते हैं कि बस इस मजमुए से, यानी इन दोनों बातों के जमा हो जाने से जानवर के हिल्लत साबित हो गए। ठीक है, अब खुलासे तफसील जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तफसील नहीं है तो ताकि बात मुकम्मल हो जाए। तो फरमाते हैं कि और जब ऊपर कुफार के इत्तबा का मजमूम होना मालूम हो गया, यानी पीछे की आयात में अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई तुम कुफार की इत्तबा ना करो ना, जो फरमाया था ना इतना सख्त बात कही थी कि इन तो ते अक्सर अमन फिर अर्दे युजल्लू कान सभी जिंदा। तो जिस हलाल जानवर पर जबाह के वक्त अल्लाह का नाम बिला शरकत लिया जाए, उसमें बेतकल्लुफ होकर खाओ और उसको मुबाह और हलाल समझो अगर तुम उसके अहकाम पर ईमान रखते हो। ठीक है, यानी इन कुंतुम भी आयाती ही मोमिनीन, अल्लाह के हुक्मों को तुम मानने वाले हो तो तुम खाओ, क्योंकि हलाल को हराम जानना खिलाफ ईमान है। ठीक है, जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया उसको अगर तुम हराम कह रहे हो तो फिर ये तो तुम्हारे ईमान को खत्म कर देगा। ठीक है, और तुमको कौन अमर अज तबीले अकीदा इसका बायस हो सकता है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर जबह के वक्त अल्लाह का नाम बिला शिरकत लिया गया हो। ठीक है, यानी ये तो अकीदतन इंसान के जहन में जो नजरियात होते हैं ना उन्हीं को अकीदा कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नजरिया है तुम्हारे जहन में जो तुम्हें इस बात से रोक रहा है कि तुम ऐसे जानवर को ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया और सिर्फ अल्लाह का नाम लिया गया, उसके साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं बनाया गया, बस तुमने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ठीक है, ये बात की गई, तो तुमको कौन सी चीज जो है ना वो रोक रही है, कौन सा नजरिया तुम्हें रोक रहा है। हालांकि अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में इन सब जानवरों की तफसील बतला दी है जिनको तुम पर हराम किया है, जैसे सूरह मायदा की आयत नंबर 3 है ना, 3 ही है शायद, देखें इसी जिल्द के अंदर शुरू में है, तो उसमें नाम ले लेकर के तुम बता दिया है कि जिनको तुम पर हराम किया है, मगर वो भी जब तुमको सख्त जरूरत पड़ जाए तो हलाल है, यानी तुम्हारी जान पे बन जाए तो फिर तुम उनमें से भी उतना खा सकते हो जितना कि तुम्हारी जान बचाने के लिए जरूरी है। और इस तफसील में ये मज़बूह अला इस्मिल्लाह दाखिल नहीं है, फिर उसके खाने में एतकादन क्यों इतबाज, यानी जिसमें तुम जिसको तुम पर हराम किया गया है तो उसमें ये तो नहीं है कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे लिए हराम है, ये तो नहीं है उसके अंदर, तो फिर तुम क्यों जहन में सोच रहे हो उसके बारे में, पता नहीं ये हलाल है कि ये हराम है, ये तो हमारा मारा हुआ है, तो अल्लाह का मारा हुआ नहीं है, ये क्यों तुम इस किस्म के मखमसे में पड़ रहे हो। और उन लोगों के शुबहात की तरफ असलन इल्तफात ना करो, यानी बिल्कुल भी तुम उन लोगों के शुबों की तरफ इल्तफात ना करो, क्योंकि ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी कि उन्हीं में से ये भी हैं अपने साथ दूसरों को भी अपने गलत ख्याल की बिना पर बिला किसी सनद के गुमराह करते फिरते। ठीक है, जैसे कि ये फरमाया था ना कि वह इन कसीरन लयुज़िल्लून बिअहवाहिम बिगैर इल्म, ठीक है, कसीर लोग जो है ना, ये दूसरों को भी अपने ख्वाहिशात की बुनियाद पर बगैर इल्म के गुमराह करें, यानी अपनी अपनी अकली दलीलें पेश करते हैं खाली, ठीक है, जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होती हैं। तो ऐसी अकली दलील जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रही हो ना, उसको अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये इल्म नहीं है, उसके इल्म होने का ही इनकार कर रहे हैं। ठीक है, अब सोच लें, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि अगर कोई अकली दलील भी है, ठीक है, जो कि अकल जो है वो कह रही है कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं उसको, बेगैर इल्म, ये इल्म नहीं है, ये इल्म का गैर है। ठीक है, इनकी अकली दलील क्या थी कि देखो जिसको अल्लाह मारता है वो खाना चाहिए, और जिसको तुम मारते हो क्योंकि तुम अल्लाह नहीं हो, तुम खुदा नहीं हो, तो उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह बड़ा है, क्यों 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 का जवाब दे रहे थे ना, अल्लाह बड़ा है या तुम बड़े हो, तुम भी मानते हो कि अल्लाह बड़ा है, तुम छोटे हो, ठीक है, तो ये अकली दलील दे रहे थे कि अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह का मारा जो है वो फायदामंद होना चाहिए खाने के लिए, खाने के एतबार से, और तुम छोटे हो तो तुम्हारा मारा हुआ जो है वो नुकसानदेह होना चाहिए खाने के लिए, ये अकली दलील दे रहे थे। इस अकली दलील को अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये इल्म है ही नहीं। क्यों इल्म नहीं है भाई, हालांकि अकल अकली बात है, इल्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। ठीक है, तो ये परसेप्शन ऑफ रियलिटी कहलाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन ऑफ समथिंग, हाउ डू यू परसीव समथिंग। ठीक है, एक ईमान वाले की परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है ना वो ये होती है कि अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का कलिमा, जो कि हुक्म में मजीद आप वाकयात जो अल्लाह ने बयान करवाए फरमाए हैं वो भी ऐड कर दें, तो फिर आप उसको कलिमातुल्लाह कहेंगे। तो कलिमातुल्लाह के अंदर अहकामात भी शामिल हैं और वाकयात भी शामिल हैं, जैसे पीछे पीछे वाली आयात की तफसीर में हम तफसीर से पढ़ चुके हैं इस बात को। ठीक है, तो मुसलमान की परसेप्शन ऑफ रियलिटी क्या है कि भाई कलिमातुल्लाह जो है ना ये हकीकत है, और हमारी अकल से जो बात समझ में आती है वो सिर्फ उस हद तक हकीकत है जब तक वो कलिमातुल्लाह से टकराती ना हो। जब वो टकराएगी तो क्या करेंगे, किसी ने सहाबियात वाली क्लास ली थी तो वो सहाबियात वाली क्लास की रोशनी में इसका जवाब दें, क्या करेंगे कि जब कलिमातुल्लाह से हमारी अकल टकराती हो तो क्या करेंगे उसके साथ। जी, फुटबॉल बनाएंगे उसको हम, ठीक है ना, क्या करेंगे उसके साथ, हम उसको फुटबॉल बनाएंगे। फुटबॉल के साथ क्या करते हैं, जूते की नोक पर उड़ाते हैं उसको, क्या करते हैं, फुटबॉल को जूते की नोक पर उड़ा देंगे। यानी आप लोग तो रा के जो साउंड है वो डी से क्यों अदा करते हैं, हम तो आर को रा की साउंड समझते हैं, तो उड़ा देंगे, ठीक है, जूते की नोक पे उड़ा देंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये सहाबियात और सहाबा के मामले में मामला नहीं है, ये हर चीज के बारे में यही उसूल है कि जो चीज अल्लाह के कलिमात के खिलाफ जाती हो, हम उस हर चीज को, चाहे वो साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो है वो इंजीनियरिंग हो, चाहे जो है वो फलसफा हो, फिलोसफी हो, राइट, चाहे वो अकलियात हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, नकलियात हो, अकलियात हो, जो कुछ भी हो, हम उसको जूते की नोक पे उड़ा देंगे। इसको ईमान कहते हैं, इसको ईमान कहते हैं, राइट, और जहां ये नहीं है वहां पर आप हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ आमाल कर लें, ईमान नहीं है, ईमान नहीं है वहां पर। ठीक है, आप बुरका पहने, आप 10 बुरके पहने अपने ऊपर, लेकिन अगर ये नहीं है ना कि कलिमातुल्लाह के खिलाफ जो बात है उसको हम नहीं मान सकते, अगर ये नहीं है आप 10 बुरके अपने ऊपर चढ़ा लें, घर में बैठ जाएं, लेकिन ईमान नहीं है। ठीक है, तो भाई ईमान को तो हम समझते ही नहीं है कि ईमान है क्या चीज। तो बहरहाल तो फरमाया कि भाई ये नौ के शुबात की तरफ असलन इतफात ना करो, क्योंकि ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी कि उन्हीं में से ये भी हैं कि अपने साथ दूसरों को भी अपने गलत ख्यालात की बिना पर बिला किसी सनद के गुमराह करते फिरते हैं, लेकिन आखिर कहाँ तक खैन बनाएंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद ईमान से निकल जाने वालों को, जिनमें ये लोग भी शामिल हैं, यानी वो लोग जो थे और आज के जमाने में भी जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं वो लोग भी शामिल हैं इसके अंदर, खूब जानता है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ना, हुआ आलमो बिल मोहतदीन। ठीक है, जो ईमान के खिलाफ बात करते हैं ना और उसको इल्म करार देते हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में क्या लफ्ज फरमा रहे हैं, हद से गुजर जाने वाले, हद से गुजर जाने। ठीक है, बस जक बारगी उनको सजा देगा, यानी एक बार ही पकड़ करके ना उनको अच्छी तरीके से जहन्नुम के अंदर सजा देगा। और तुम जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो, वजरो जाहिर इसमें वो बातें ना, मसलन हलाल को हराम एतकाद करना बातिनी गुनाह है, यानी सोचना, क्योंकि सोच जो है ना इंसान के अंदर की चीज होती है, बाहर किसी को नजर नहीं आती कि ये क्या सोच रहा है, तो ये अंदरूनी गुनाह है, तो इसको भी छोड़ देने का, वो बातें ना, जैसे कि उसका अक्स भी कि हराम को हलाल समझ रहे हैं, तो ये भी बात नहीं गुना है, और एक्चुअली हराम को खा रहे हैं लोगों के सामने बैठ करके, तो ये जाहिरी गुना है कि लोग भी देख सकते हैं कि आप खा रहे हैं, लेकिन अगर आप खा नहीं रहे लेकिन समझ रहे हैं उसको, तो ये भी बात नहीं गुना है। ठीक है, तो उनको उनके किए की अनकरीब कयामत में सजा मिलेगी। इन लदीना यक्सबुनल इस्मत फी सयुजौना बिमा कानू यक्तरिफून। और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर बतरीक मजकूर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, जैसे कि मुशरिकीन ऐसे जानवरों को खाते हैं, और ये अमर यानी मालम या युद्ध का रिस्मुल्लाहि अलैह का खाना बेहुक्मी है, गर्ज ना तर्क में उनकी इतबा करो और ना फेल में उनकी इतबा करो, यानी ना करने में उनकी इतबा करो और ना ना करने में उनकी इतबा करो। और उन लोगों के शुबहात इसलिए काबिल इल्तफात नहीं कि यकीन शयातीन जिन अपने इन दोस्तों और पैरुओं को, यानी अपने फॉलोअर्स को ये शुबहात तालीम कर रहे हैं ताकि ये तुमसे बेकार में जिदाल करें, यानी बहस मुबाहसा करें तुमसे, इसलिए ना ये अपने दोस्तों को ना इन शुबहात की तालीम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी अपने एजुकेशन सिस्टम के जरिए से, ये उनका अपना एक होम स्कूलिंग सिस्टम तो नहीं कहेंगे लेकिन इनका अपना एक ये सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था पूरा का पूरा। ठीक है, जिससे कि ये अपने जो मददगार होते हैं उनको शुबहात सिखाते हैं। ठीक है, क्यों सिखाते हैं वो ये शुबहात, ताकि वो ईमान वालों से जिदाल करें, बहस मुबाहसा करें, यानी अव्वल तो ये शुबहात नस के खिलाफ, दूसरे गर्ज महज जिदाल इसलिए काबिल इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, एक तो ईमान के खिलाफ है, नस के खिलाफ यानी अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ है, नस से मुराद क्या होती है, अल्लाह के अहकाम जो तो कुरान और हदीस की शक्ल में हम तक तो पहुंचे हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि इनका मकसद ही जो है वो बस बस बहस मुबाहसा होता है, तो उनकी तरफ जो है ना आप तवज्जो ही ना करो। और अगर तुम खुदा न खास्ता नौ की अताअत अकायद या अफाल में करने लगोगे तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे कि खुदा की तालीम पर तुम दूसरे की तालीम को तरजीह दो। अजीब, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिस जमाने में दुनिया में मौजूद थे ना, जिस जमाने में पैदा हुए और दुनिया में पले बढ़े, ये उन्हीं की भी तफसीर है ना ये असल में। ठीक है, बयानुल कुरान से ये नकल किया ना हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं कि अगर तुम उनकी अकायद या अफआल में अताअत करने लगोगे तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। इसकी वजह क्या बयान कर रहे हैं अपनी तफसीर में कि खुदा की तालीम पर दूसरे की तालीम को तरजीह दे दो, जहां बराबर समझना भी शिर्क है, बराबर समझना भी शिर्क है कि अल्लाह की तालीम और काफिर की तालीम, इसको बराबर शर्क समझना भी शिर्क है, और तुम तो उसको फौकियत दे रहे हो। اللہ کی تعلیم کے اوپر، یعنی ان کی اطاعت ایسی بری چیز ہے، اس لیے اس کے مقدمات یعنی التفات سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو افضل سمجھنا شروع کر دیں، نہیں، آپ سنیں ہی نہیں ان کی بات، ٹھیک ہے، ورنہ مشرک ہو جاؤ گے تم بھائی. تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ کنفیوز ہو جائیں گے، نہیں، ہمیں ذرا کلیئر ہونے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف کنفیوژن، ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر بھائی کریں تو کیا کریں؟ بھائی سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ کریں نا، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں معافی مانگنا، کہ اللہ اب تک جو ہم نے کیا یہ غلط کیا، ہم اس پہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو غلط سمجھ کر کے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جلدی سے بتائیں کوئی. جب اللہ تعالیٰ سے غلطی کا اقرار کر کے، اپنی غلطی کا اقرار کر کے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ جی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس تعلیمی نظام میں ہم خود پل بڑھ کر کے جوان ہوئے ہیں، اور نسلیں ہماری، پچھلی کئی نسلیں ہماری اسی تعلیمی نظام میں پلی ہیں، ہم اس تعلیمی نظام کو ایک دم سے ختم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی مدد سے کر سکتے ہیں. تو اللہ سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے، اللہ سے مدد مانگنا، اور پھر اس کے بعد تیسرا کام کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے پیمانے پہ کچھ قدم اٹھانا شروع کر دینا اس کی طرف، ٹھیک ہے، چھوٹے پیمانے پہ اپنے طور پہ، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے کام شروع کیا، اسی طریقے سے اپنے گھر سے کام شروع کرنا، اور اس کے بارے میں سیکھنا شروع کرنا کہ بھئی اب اس پورے کے پورے مشرکانہ نظام کو، کافرانہ نظام کو جو ہے وہ ہم کیسے مؤمنانہ نظام میں تبدیل کریں، ٹھیک ہے، پورے ملک کے لیول پر ہم نہیں کر سکتے، اپنے گھر پہ کے لیول پہ تو کر سکتے ہیں نا، مشرکانہ نظام کو مؤمنانہ نظام میں ہم کیسے اس کو فلٹر کریں، ٹھیک ہے، اسی کو ہوم سکولنگ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں، جو مسلمانوں میں ہوم سکولنگ رائج ہے اس کو یہی کہتے ہیں، مشرکانہ نظام کو فلٹر کر کے مؤمنانہ نظام میں کیسے. اب اس کے لیے جو لوگ جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں، کریکولمز کو سبسکرائب کرتے ہیں، سسٹمز کو سبسکرائب کرتے ہیں، اور اس میں سے پہ فلٹر آؤٹ کرتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمان کو جو ہے وہ اندر داخل کرنے کی محنت کرتے ہیں اپنی اولادوں کے اندر، ٹھیک ہے. اسلامک اسکولس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، خالی لیبل لگنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی محنت کیسے ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو خالی لیبلس کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ لپٹن کی ٹی سب سے بہترین ٹی ہے، یہ لیبل ویبل سے کیا ہوتا ہے بھائی، لیبل لگانے والے بہت مل جائیں گے دنیا کے اندر، لیکن کام کرنا جو ہے نا وہ پھر تفصیل دیکھنی پڑتی ہے نا. اسلامک اسکول کے اندر بھی پڑھانے والا اگر ملحد قسم کا کوئی ٹیچر انہوں نے ہائر کیا ہوا، اور کریکولم تو ویسے بھی سارا کا سارا وہی ہوتا ہے، نان مسلمس کا بنایا ہوا کریکولم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اوپر سے لیبل اسلامک اسکول لگا دینے سے کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اصل چیز تو ٹیچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹیچر کے بعد دوسرے درجے میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کریکولم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں یہ دونوں مل کر کے پھر تعلیمی نظام بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹیچر اور کریکولم، حتیٰ کہ کریکولم اگر آپ اچھا نہیں بھی بنا سکتے، جیسے آج کسی کے پاس انفارچونیٹلی صحیح ایمان والا کریکولم نہیں ہے، لیکن اگر ٹیچر ایمان والا ہو تو وہ فلٹر آؤٹ کر کے اور اس کے اندر ایمان کو داخل کر کے بچوں تک پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نبی ٹیچرز ہوتے تھے اور کتابیں جو ہے وہ کریکولم ہوتی ہیں. تو اصل جو ہے نا وہ ٹیچر ہوتا ہے ہمیشہ. پیرنٹس کو دین کا پتہ ہوگا تب ہی وہ سمجھ سکیں گے کہ یہ اسکول صحیح ہے یا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم تو انہیں پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں جو کہ دین کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس طرف آنا چاہتے ہیں، تو انہی پیرنٹس سے بات ہو رہی ہے. جو دین کو مانتے ہی نہیں تو ان سے تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ آؤ، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں کامل اور پکا یقینی ایمان عطا فرمائے، اور ہمارے اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.